संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में समय सार परमागम का 126वां कलश चल रहा है। संवर अधिकार का पेज नंबर 289 शैव रूप्यं जर रूपतां च दधतो एक बात कही थी अंत में जाते जाते इस छंद के संदर्भ में कि यद्यपि पिछली गाथाओं में वर्णादि और रागादि से ही भिन्न आत्मा को बताया है, कर्म नो कर्म और भाव कर्म से भिन्न आत्मा को बताया है, तो 29 प्रकार के भावों में 20 जो प्रकार हैं वो जड़ के हैं, लेकिन यहां पर राग को की मुख्यता से ही बात की है। भले ही राग की मुख्यता से बात की हो, लेकिन वे सभी 29 भावों से ही भेद विज्ञान बताया जा रहा है। राग की मुख्यता से इसलिए बात की है, पिछला आश्रव अधिकार है और हम भावाश्रव की मुख्यता लें तो मोह राग द्वेष के भाव ही भावाश्रव हैं, तो आश्रव से भिन्न आत्मा की बात को मुख्यता से लिया है। जब शरीर आदि की बात आती है तो अजीब से भिन्न भगवान आत्मा की बात होती है। कर्म और नो कर्म की बात होती है, कर्म माने ज्ञान वर्ण आदि और नो कर्म माने शरीर आदि, इनसे भेद विज्ञान की बात होती है, वो अजीब से भेद विज्ञान की बात होती है। जब पुण्य पाप और आश्रव भावों से भेद विज्ञान की बात होती है तो आश्रव तत्व से भिन्नता की बात होती है। तो ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग में चैद रूपम जड़ रूप चांच दधतो, गाथाओं में तीन चीजों का नाम लेके उसे जड़ कहा था। कौन थी तीन चीजें? कर्म नो कर्म और भाव कर्म। तो हमको उनकी मुख्यता से बात है, ऐसे भाव कर्म भी आ गया। ही हमने वहां दोनों को हटाकर राग को जड़ रूप और ज्ञान को चिद्रूप कहा है। अंत में जाते जाते कल कहा था कि सब जगह राग को जड़ सिद्ध करते आए हैं। 67-68 गाथा में ये कहा था, मोहन कम्म सुदया ते नित्य मचेदना मुक्ता, के गुणस्थान है तो मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए नित्य अचेतन है। यदि हम इस धारा पर विचार करें तो फिर राग में और ज्ञान में प्रदेश भेद है, ये बात इतनी बड़ी हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ऐसा लगता है जब शुरू से ही उसे जड़ कहते आए हैं और भेद विज्ञान कराते आए हैं तो उसी बात को तो प्रकारांतर से कहा है। जब वो सिद्धांत है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, उस सिद्धांत पर घटित करके तो कहा है ना, लेकिन अब ये कह दिया कि उनमें प्रदेश भेद है तो एकदम सारे मुमुक्षु समाज में आत्मसमर्पण अंतर में एक खलबली मच गई। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये नहीं होता है कि अब तक जो कहा जा रहा था उसका भाव भी तुम्हारे ख्याल में नहीं आता था, आया है। यदि आया होता तो जब राग को जड़ कहा था तब खलबली क्यों नहीं मची है? तब नहीं मची ना। इसका मतलब है हम उसका पूरा अर्थ समझे ही नहीं थे। कहने का अर्थ यह है कि यहां पूरी तरह से उनकी भिन्नता बताना इष्ट है, क्योंकि एक को त्यागना है और दूसरे को ग्रहण करना है। यदि उसमें किसी भी तरह का अभेद हमारी दृष्टि में रहा तो निश्चित रूप से फिर उसे हम त्यागने की भावना नहीं कर पाएंगे। छूटे रुपये तो बड़ बाद की बात है। छूटना तो देह का भी अपने हाथ में कहां है। अरहंत भगवान ने संपूर्ण जो राग तो छूट गया उनका, देह नहीं छूटी। छूटना काय को कहते हैं? यदि एक क्षेत्राव ग्राह को ही छूटना कहते हैं, नहीं मैंने इकट्ठा होना कहते हैं, तो अनंत भगवान देह में तो मौजूद है ना, और राग नहीं है उनके। तो जो राग पहले छूटा और देह बाद में छूटेगी, और समझ लो राग छोड़ने के लिए उन्होंने थपक श्रेणी आरोहण का अभूतपूर्व पुरुषार्थ किया, और देह के छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, काल पाकर अपने आप छूट जाएगी। कोई उस दिशा में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों वगैरह वो तो छुट्टी हुई ही है। तो ये राग से भेद विज्ञान की मुख्यता है, और राग को ही जड़ कह रहे हैं। वे कह रहे ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञान और राग के बीच में अंतर दारुण दारुणेन, ये दारुण दारुणेन क्या है? दारुण माने होता है भयंकर, निर्दयता पूर्वक, और दारण माने होता है चीरना, है यदि बहुत मजबूत लकड़ी है तो उसको चीरने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है, आरा से उसे चीरना पड़ता है। तो अंतर दारुण दारुणेन भयंकर, इसमें बल इस बात पर है कि वो शरीर की ताकत की बात नहीं है, जिससे हमें अलग होना है, और आज तक जिसे हम अपना मानते रहे हैं उसे छोड़ने के लिए और उससे छूटने के लिए बहुत दारुण धारण करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। और उसके पहले वो भेद विज्ञान की अविरल धारा प्रवाह से पड़ जाए, भेद ज्ञान की अविरल धारा प्रवाह से निरंतर वो आरा चलानी है निरंतर, तब वो जाकर के होगा। एक जो लड़की है जिसकी शादी होती है वो छोड़ के जाती है, तो कितना दुख होता है, रोती है, अपने कहते नकली आंसू हैं जो है, उसमें कुछ दम नहीं है, वो एक्चुअल है। जरा कल्पना करो कि जिसके पास पैदा हुई, घर में रही, पली पुसी, इतने दिनों तक लाड़ प्यार पाया, और उसे छोड़ते वक्त तुम क्या समझते हो दुख नहीं होगा? अपने पति से परिवार से उधर जाने का बहुत प्रेम हो, बहुत उत्साह हो, चाहे जितना हो, फिर भी वो दुख तो होगा ही। मैं एक बात कहा करता हूं कि घर में हमारी माताएं बहनें दिन में 3 बार भी लड़कियों से कहा करती हैं कि ये तो पराया धन है, ये तो छोड़ एक दिन छोड़ के चली जाएगी, तो लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि हमें जबरदस्ती मैंने पराया पराया कह के हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमारे पालन पोषण में पढ़ाई लिखाई में ढीलापन किया जा रहा है। लेकिन आजकल तो ये शिकायत नहीं रही लड़कियों को कि हमारी पालन पोषण में और पढ़ाई लिखाई में कोई ढीलापन किया जा रहा है, फिर भी ये शब्द बर्दाश्त नहीं होते हैं। पुरानी लड़कियों को तो दिल में ही चुभते होंगे, जवान पे कुछ नहीं आता था, आज तो लड़कियां जवान पे बोलने लगी कि नहीं माम मम्मी द्वारा ये बात मत कहना। लेकिन मैं उन लड़कियों को बताना चाहता हूं कि बुक भाई सही है, रोजाना बात वो करना ही चाहिए। क्यों साहब क्यों सही है? क्योंकि ये मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, ऐसी मान्यता निरंतर बनी रहेगी तो जिस दिन जाएगी उस दिन हार्ट अटैक हो सकता है। वो जो दुख है उसको धीरे धीरे बांटना, अपने मन को तैयार करने की वो बात है, लड़की के मन को भी और अपने मन को भी, क्या? और उसी के बल पर निरंतर वो अविरल धारा बहती है, क्या? कि मुझे जाना है जाना है, एक ही है मेरा नहीं है, जाना है जाना है। उसके बल पर जो आज तुम कह रहे हो ना, हंसते हंसते मम्मी पापा टाटा टाटा करके चली जाती हैं, वो उस धारा के बल पे जाती हैं निरंतर। ऐसे देह भिन्न है और राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, ऐसी धारा अविरल रूप से बहेगी तो हम राग को छोड़ के जा पाएंगे, तब राग छूटेगा। परायपन की बुद्धि पूरी तरह होगी। अब कितना बढ़िया उदाहरण है ये कि वो लड़की अपने ही घर में पैदा हुई, मान लो कोई पाटनी है तो पाटनी के ही घर में पैदा हुई, पाटनी ही है, जैसा लड़का जुड़वा हुए, लड़का तो पाटनी है, लड़की पाटनी नहीं है। यदि लड़की पाटनी नहीं होती तो जो गैर पाटनी है, मान लो गोधा कोई, वे उससे शादी कैसे करते? उसे पाटनी मान के ही संबंध नक्की किया ना, क्यों? अब वो पाटनी नहीं रहेगी, कैसा विचित्र है। सातवां फेरा पड़ते ही तो गोदा हो जाएगी। अब बोलिए, पाटनी और गोदा दो एक साथ तो रह नहीं सकती वो, कि मैं तो दो ही रहूंगी, पाटनी गोदा है, कैसा लगेगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा मत कहना, कोई उदाहरण बता सकते हो कोई आपको? विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? नहीं, बहुत धोखे में हो। तो चुनाव में वो लिखती थी, उसका नाम था इंदिरा नेहरू गांधी, समझे ना? क्या इंदिरा नेहरू गांधी, भले ही वो राजनीतिक हो, क्योंकि नेहरू की के ये नाम का भी लाभ लेना है उठे उसे, और गांधी के नाम का भी लाभ लेना है उसे, क्यों? तो जो इंदिरा गांधी जो लिखती थी, ये गांधी कौन है? ये गांधी कैसे आ गया उसमें? गांधी से उसका क्या लेना देना है कि महात्मा गांधी के नाम पर उसने अपना नाम जोड़ा है? महात्मा गांधी ने, नेहरू जी जब उससे शादी करने को तैयार नहीं थे, समझे ना, तो गांधी जी ने कहा कि तू ये समझ नेहरू से कि ये मेरे घर आ रही है, मैं इसे अपना नाम देता हूं। फिरोज भी गांधी थोड़ी था, नेहरू जी ने फिरोज को अपना नाम गांधी दिया, और उसकी पत्नी होने से वो इंदिरा गांधी है, वो गांधी जी से कुछ लेना देना नहीं है। और वो गुजराती, मान लो कुछ, वो तो पारसी था, गुजराती पारसी हो सकता, वहां गांधी लिखते हो, गांधी होगा भी, तो भी वो उस गांधी, फिरोज गांधी के वजह से गांधी नहीं लिखती थी चुनाव में। चुनाव में लाभ फिरोज गांधी का कुछ भी मिलने वाला नहीं था, है? चुनाव में लाभ तो उससे मिलने वाला था, कैसे? महात्मा गांधी के नाम से नहीं छोड़ते, दोनों रहते, लेकिन लोग तो स्वीकार नहीं करता, लोग तो उसे इंदिरा गांधी ही कहता था, इंदिरा, लोग ने कभी से इंदिरा नेहरू गांधी नहीं कहा। सीधी सच्ची बात है कि वो पाटनी और गोधा एक साथ नहीं रह सकती, क्यों? अब ये जो पाटनी से गोधा, नाम चेंज कराना पड़ता है ना, अदालत में जाके कराना पड़ता है। वो खुशी खुशी जाके वहां साइन करती है, तो वो निरंतर का ये अभ्यास है कि मैं पादनी तो हूं लेकिन लिमिटेड काल के लिए ही हूं, और उसके बाद क्या बनूंगी इसका पता उसे नहीं है। क्या इसका पता तब लगेगा जब वो सातवां फेरा हो जाएगा। क्यों? अभी तो नहीं है, लेकिन वो जानती है ये मेरा बहुत अस्थाई है। ऐसे ही राग मेरे में है, अपने घर में ही पैदा हुआ है, समझे ना। और ज्ञान का जुड़वां भाई, जुड़वां बहन है, समझ लो। ज्ञान राग एक साथ ही पैदा हुए हैं क्या नहीं है? तुम, उसमें तुमको यदि अटपटा लग रहा हो तो वीतरागता और राग, ये दोनों तो एक सात गुण की ही पर्याय है ना। और ऐसा होता है ना, ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं होते, श्रद्धा में सम्यक से मिथ्या से एक साथ नहीं होते, लेकिन सात गुण में तो राग और वीतरागता एक साथ होती है ना, है? होती कि नहीं होती? ऐसे अब एक वो जो वीतरागता है वो मैं हूं, अनंत काल तक के लिए मैं हूं, और राग है वो मैं नहीं। तो जो भेद विज्ञान के अविरल धारा प्रवाह की जो बात है वो चालू है। वो तो कौन सी प्रक्रिया, ये तो पराया धन है, ये तो पराया धन वाली है। अब चाहे जितना मन से समझाए कि नहीं, वो तो अब लड़का लड़की बराबरी होते, कुछ नहीं होते, लड़का कौन सा निहाल कर देते, वो भी नौकरी पे जाता है, छोड़ के चला जाता है, ऐसी लड़की गई है, लड़का गया ना, लड़की साथ रहती है, कितना ही मन को समझाओ लेकिन मन के किसी कोने में अंदर अब मेरा वंश चलेगा तो किससे चलेगा बोला। अब वंश चलाना कोई इतनी महत्वपूर्ण बात तो नहीं है, है? फिर भी कितना गहराई अंदर से उससे एकत्र है कि ये चलना तो चाहिए किसी ना किसी तरह। इसलिए कहते हैं दारुण दार मेन, कि निर्दयता से उसे उसको तुम्हें उसमें चीरा लगाना पड़ेगा। क्या परितो, परितो माने चारों ओर से, फोर एंड बाइन, ऐसा नहीं कि एक तरफ से काट दिया एक तरफ से रहने दिया, चारों कौन सी चार तरफ है भाई साहब? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव आ गया ना, प्रदेश भेद है? अंतर दारुण दारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य। कैसे करो? चैद रूप्यम जड़ रूप कांत दधतो, कि ज्ञान चैद रूपम दधतो और राग जड़ रूपताम च दधतो, यहां जोड़ो है ना। कृत्वा विभागम द्वयम, दोनों में भेद डाल दो। भेद ज्ञान मुदित निर्मल मिदम, तब ऐसा भेद ज्ञान तुम्हें उदित होगा, मुदध्यासता तो आनंद 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 का झरना झर पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान घनौग मेघ मधुना संतो द्वितीय अच्युत, और द्वितीय अच्युत, द्वितीय मैं दूसरा कौन, वो राग, उससे च्युत होकर ये भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान का घन पिंड रूप अंदर में हो जाएगा, मैंने मान लेगा ऐसा। देखो यह ज्ञान है तिद रूप किंतु, ऊपर जो कलश में ज्ञानस रागस्य और चेद रूपम जड़ रूपताम अलग अलग है, वो नीचे जानबूझकर मिला दिया है, ख्याल में। यह ज्ञान तो है तिद रूप किंतु मैं ज्ञान, यह ऊपर का यह यहां मैं बदल गया, पहली पंक्ति में यह था कौन, यह ज्ञान, और दूसरी पंक्ति में मैं ज्ञान, क्यों अकेले कोई यह से ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन की बात है, इस तरह के अभ्यास से आगे क्या है इस तरह का अभ्यास। अब देखिए इस भेद विज्ञान में रिपीटिशन दोष नहीं गुण है। देह जुदा और आत्मा जुदा, राग जुदा और आत्मा जुदा, इसकी धारा अविरल रूप से बहनी चाहिए। एक लाख बार भी बोलो तो ये कम है, और जाप तो इसका होना चाहिए ना, अजपा जाप जिसे बोलते हैं। पर हम तो नमोकार मंत्र का करते हैं, नमोकार मंत्र का मत करना, ऐसा मत क्या नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा मुश्किल हो जाएगी। देखो सिद्धतक विधान में लिखा है कि सिद्धों के तो अनंत गुण हैं, तो कोई कमी तो है नहीं। और तुम बार बार बेई 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 ठोके जा रहे, हर हर में दस पांच पच्चीस गुण हैं, वो उन्हीं में खेल रहे हो, फिर बार बार उन्हीं को कहते हो। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं पुनरुक्त भणंत, बार बार स्तुति करण में नहीं पुनरुक्ति भणंत, बार बार स्तुति करने में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। यानी पूजा हमने कल करी थी देवसास गुरु की, तो आज भी कर रहे, फिर कल भी करेंगे, फिर परसों भी करेंगे, तो वही वही है, रोजीना रोजीना वही 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 वही। हम तो उसमें होशियार हो गए, हमने तो उसमें से भी रास्ता निकाल लिया। क्यों वही वही दिए, ऐसा तो रोजीना रोजीना दाल वही दाल वही रोटी वही दाल वही रोटी ऐसा चलता है। तो बदलना तो चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो हमने बदल दी। एक दिन प्रथम देव की पूजा है, दूसरे दिन फिर मैं जानबूझ करके लेखकों के नाम नहीं ले रहा देवगल जी की पूजा, डॉक्टर भाई की पूजा, समझ गया ना, बदल बदल करके हम करते हैं ना। तुम लोग पूजा करते, मैं सुनता हूं बहुत ध्यान से, जब भी वो भी सुनता रहता हूं, बदल बदल के करते हैं। थोड़ा तो चेंज तो होना चाहिए ना, खैर कोई बात नहीं, वो तो अच्छा है। लेकिन तो हमको अकेला उतना ही कहा, कहते कि नहीं नहीं वो तो हम तो सबको सबको थोड़ी, हम कोई रागदेश नहीं रखना चाहते। कोई कहे जुगल जुगल जी कहते, दादा की करते नहीं, दादी दादा ही करते, युगल जी की यहां कोई करता ही नहीं है। हम तो कोई आरोप ना लगे, इसलिए हम बदल बदल के करते हैं, घबराना नहीं, बदल बदल के करते हैं। यदि इतनी ही बात नहीं है, तुमको वही दाल रोजाना नहीं रुचती इसलिए करते हो। क्यों कि मैं कभी कभी देखता हूं कि तुम देवसाज गुरु पूजन छोड़ ही देते हो, अलग लगा के छुट्टी कर देते हो। अब तो वो समस्या नहीं रही ना वालचंद जी साहब, करते हो ना, ऐसा नहीं करते हो, क्या करना तुम्हें देखे तो करना, लेकिन जो बात परम सत्य है वो मैं आपको ज्ञान कराना चाहता हूं। देखो इस देवसाज गुरु पूजन को नित्य नियम पूजन कहते हैं, लिखा होगा ना उसमें है? नित्य नियम पूजन का क्या मतलब है, नित्य नियम क्या होता है? नित्य माने रोजाना, और नियम से करने योग्य। कहा तुम्हें छूट कहा है इसमें, मेरा यदि इस शब्द का अर्थ पे भी तुम विचार करते हैं तो अधिकार कैसे मिल जाएगा मेरा तुम्हें, कि लगता है ऐसा कैसे, ऐसा अब पार्श्वनाथ को हम बिल्कुल ही छोड़ दें ऐसे कैसे चल सकता है? क्योंकि अभी नित्य नियम करेंगे, फिर सिद्ध करेंगे, फिर फलानी करेंगे, फिर फलानी करेंगे, हमें पास आध घंटा है, पौन घंटा है, इसे ज्यादा तो है ही नहीं, तो उसका उनका विचारों को कभी नंबर ही नहीं आएगा, वे बेचारे है? तो हम तो सब बेचारों को बांट देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं कहता कि बहुत से लोग खड़े हैं और हम देने दाता रहे हैं, उन्हें भिखारी तो मैं कह नहीं सकता, तो थोड़ा थोड़ा सबको दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। कल बेटा कल तुम्हें दिया था, आज इसे जाने में मैं बेटा है कि बाप भी किसका कृपा कर रहे हो, किसको छोड़ रहे हो, किसको ले रहे हो, वहां भी तुम्हारा चुनाव चलता है। तो क्या है जरा समझना, ये नित्य नियम क्या है। मैं उसका पूरा अर्थ मैंने बहुत बचपन से सोचा है, 8 वर्ष की उम्र से, और मैं उसे जब से मानता हूं। तो क्या है उसका अर्थ कि नित्य नियम जो पूज्य हैं वे सबके सबकी पूजा हमारे रोजाना होनी चाहिए। तो पूज्य कौन है कि देव सातगुरु, इनमें सब आ जाते हैं, सारे अरहंत सारे सिद्ध आ गए ना, गुरु में आचार्य उपाध्याय और साधु, तो कोई पंच परमेश्वरी से बचा नहीं, और उनकी वाणी जनवाणी आ गई शास्त्र। तो देव सातगुरु में जितने जगत में पूज्य हैं वो सब आ गए, इसलिए इसके आगे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं थोड़ी सी है, वो अकीर्तन दिन चैताला है ना, तो उनका तो होना ही चाहिए, क्योंकि इनमें बे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां नहीं है वहां। अकीर्तन चैताला में किन की मूर्तियां हैं मालूम, सिर्फ जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ अद्वितनाथ की नहीं है, क्योंकि वे अनादि निधन है, समझ गए आप। तो वो तो नहीं आए, चलो रख लेते थे अकीर्ता। तो एक अर्घ पूजा अर्घ जो भी तुम्हें चढ़ाना है, कृत्या कृत्यम चारु चैतन्य लियान, उनकी उनका रख लो तो ठीक हो गया ना, तो उसे भी नित्य नियम में शामिल कर देते हैं। अब और कुछ रह गया कि एक सामने चाहे अर्घ दे दियो, चलो इसमें शिकारो जी और वो सारे तीरा, फिर ये कृत्रिम हो गया ना, भला कि वहां आ गए कृत्रिम में, जितने जितने जन्मभूमि जहां कृत्रिम विराजमान है, कृत्या कृत्रिम चारु चैतन्य लियम। तो आपके मंदिर की मूर्ति भी आ गई, आपका मंदिर भी आ गया, भेद में करने जाओगे तो इतने हैं कि तुम जिंदगी निकल जाएगी, तो पूरे भेद करके नहीं गिना सकते, अभेद में ही सब आ सकते हैं, ख्याल में है ना, अभेद में आ गए वो सब। अब हमारे यहां तकलीफ शुरू हुई, तकलीफ कहां से शुरू हुई मैं बताता हूं। देखो, क्योंकि देव सातगुरु की पूजन तो हो गई, लेकिन सिद्ध भगवान छूट गए, ये ठीक नहीं है कि सिद्ध पूजन तो होनी चाहिए, ऐसा रहता ना, सिद्ध पूजन होनी चाहिए। अब ये सिद्ध भगवान छूट गए देवसास गुरु में, ये हमारे देवत्व का अज्ञान को प्रकट कर रहा है, ये अज्ञान से घुस गए। देवसास गुरु में नहीं आए, पंच परमेश्वरी में सिद्ध नहीं है, देव कौन है वास्तव में, तो सिद्ध ही भगवान देव है। अरहंत भगवान को तो कहीं कहीं गुरु में भी लिया है, परम गुरु कहा है उन्हें, कहीं कहीं देव में भी लिया है। सिद्ध भगवान तो एकमात्र देव है। अब हमको देव की पूजा हो गई और सिद्ध भी चाहिए फिर, क्योंकि सिद्ध नहीं हुई। आप ये फीलिंग करते हैं कि सिद्ध नहीं हुई है? तो फिर अहंत की नहीं करो अलग से, बेबी नहीं हुए, नहीं 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 बोल रहे तो मैं देव अरहंत सुसुप्त से, मैं आज से नहीं कहता हूं, पहले से ही चल रही है। उनने प्रथम देव अरहंत लिख दिया तो हमें सिद्ध बाकी लग गए, सही सुनना, शास्त्र पढ़ के ही हमें अज्ञान पैदा होता है। बालचंद जी उन्हें अरहंत का खोल दिया, पहले कहा सिद्ध नहीं है, उन्होंने सिद्ध शुरू कर दी। अब सिद्ध तो हो गए, लेकिन वर्तमान 24 तो नहीं आई, ये श्रीमंदर जुगमंदर भाव सुभाव तो नहीं आए, तो अब वो तो विद्यमान तीर्थंकर तो करना ही चाहिए ना। लेकिन मैं पूछता हूं, वे विद्यमान अरहंत है ना, तो वे अरहंतों में आए कि नहीं आए, लेकिन हमने फिर वो शुरू कर दिया। ऐसे ही ऐसे फिर क्या होता है, एक नियम है कि ये तो होगी नित्य पूजन, सुनना। अब एक होती है नैमित्तिक पूजन। नैमित्तिक पूजन किसे कहते हैं आप जानते हैं, कि किसी निमित्त से कर रहे हैं, कि आज भगवान महावीर का जन्मदिन है तो महावीर की भी कर लो स्पेशल अलग। हालांकि मूल में देव में तो आ गए, समझ गए ना, फिर भी चूंकि निमित्त उनका जन्म दिवस है, एक हो गया। दूसरा है कि ये सामने जो मूर्ति है वो भगवान महावीर की है, इसलिए उनका अलग वे नैमित्तिक हो गई। तो हर मंदिर का ये अलग अलग होगा, हर मंदिर वाले जहां चंद्रप्रभु की मुख होगी, चंद्रप्रभु कहेंगे सुभाषनाथ की होगी तो सुभाषनाथ की करेंगे, तो वो तो थोड़ी उचित लगती है भाई जी। ये नैमित्तिक, अब निमित्त नित्य पूजन में नहीं है, नित्य में शामिल नहीं है, वो नैमित्तिक में हुई। आज उनका जन्मदिन है तो काल संबंधी निमित्त, ये सामने मूर्ति है तो द्रव्य संबंधी निमित्त, हम सम्मेश शिखर आए हों पासनाथ यहां से मोक्ष गए तो ये क्षेत्र संबंधी निमित्त, क्षेत्र काल समझ गए ना भाव, ऐसे निमित्तों की अपेक्षा से नैमित्तिक पूजने होती हैं, एक नित्य पूजन एक नैमित्तिक पूजन। अब देखिए अज्ञान की सीमा कि देवसाज गुरु पूजने चलती थी, एक हमारे ही अभिन्न मित्र थे ब्रह्मचारी सरदार मलजी सच्चिदानंद, वो लिखते थे, उनका नाम कुछ और था लेकिन हम वो हमसे हमारे पिताजी के दादाजी की उम्र के थे, लेकिन हम तो छोटी सी उम्र में इस क्षेत्र में आ गए ना, और पूजा भी हमने 20 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी देवसाज गुरु की। तो वो आते थे अशोक नगर में, और ब्रह्मचारी छोटे लाल जी, ब्रह्मचारी कंजी लाल जी, ब्रह्मचारी परशुराम जी, वे सब लोग आते थे। अब वो इसलिए आते थे मैं अशोकनगर में था, पूरे पांच पांच महीना रहता, चार महीना रहते थे, खूब तप चर्चा होती थी, प्रवचन करते थे, सुनते थे। तो उनने इनके दिमाग में एक बात सूझी कि मैं भी एक देवसाज गुरु पूजन लिखूंगा, लिखो भैया तुम भी लिखो। तो उनने क्या तरकीब लगाई उस पूजन की, अचरी अचरी जानते ना आप, देव सात गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर और सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। उनने उसको खोल दिया, उस पंक्ति में खोल दिया। तो लोगों को ये बहुत बढ़िया है, क्यों ये बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या क्या बोलते वन थ्री क्या बोलते आप थ्री इन वन, कि हमको ये तीन पूजना नहीं करनी पड़ेंगी, एक विद्यमान बीस तीर्थंकर की और एक देव की इसकी सिद्ध भगवान की, और इसमें तीनों एक साथ हो जाएंगी। तो मन में तो यही था ना कि कम से कम समय लगे और एक साथ निपट जाएं। उनने उस मनोविज्ञान को पकड़ा और उसमें ये बात डाल दी। तो हमने उनसे कही उस वक्त भी कि देवसाज गुरु में जो आ गए ना, ये क्यों अलग से देवसाज गुरु में नहीं आए क्या, ये विद्यमान बीस तीर्थंकर और सिद्ध भगवान, हमने उस वक्त भी कहा उनसे जब छपी नहीं थी तब, बोले नहीं ठीक है देखना इसका मजा। और वो तो सारे गांव गांव में सब पूजनों को उखाड़ कर है कि क्योंकि थ्री इन वन एक साथ निपट गए, एक साथ निपट गए। अरे भाई तुम्हें तीन एक साथ ही निपटाने थे तो एक साथ पूजन में है ना क्यों, क्या बोले ये अज्ञान इतना जबरदस्त है कि तुम सब पंडित मिल मिल के कितनी मेहनत कर लेना लेकिन ये नहीं हटेगा समाज में से और ये मेरी पूजा चलेगी क्या चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है। कभी कभी मौका आता है तो मैं चर्चा थोड़ी करता हूं, इसलिए नहीं कि उसे हटाने के लिए, कि ये जगत के अज्ञान को ये बताने के लिए कि देखो कितना है क्या है। नहीं, देवसास गुरु में का अर्घ भी चढ़ाया आपने तो उसमें से एक भी जो पूज्य है वो बाकी नहीं रहता, और मेरा शुरू से ही चिंतन रहा उस वक्त से कि देवसाज गुरु की पूजा है तो आस्थन अर्घ से हम बंधे हुए हैं, उनमें जो तत्व ज्ञान भर सकते हैं हम भरें, कम से कम ये जल फलों की प्रशंसा तो छोड़ें, ऐसा लगता भगवान की पूजन नहीं है, ऐसा लगता है ये फलों की पूजन है। उदाहरण के लिए बताता हूं, घबराना नहीं, किसी का नाम लेता हूं, कोई आप लोचन सुरस ना ग्राण उरे उत्साह के करता रहे मुपेन उपमा जाए बरनी सकल फले गुण सारे। क्या अर्थ है इसका, सोचा कभी किसी ने? जाना तो जाने दो, सोचा भी है क्या? ऐसा लगता है भगवान की पूजा हो रही है कि फलों की? क्या ऐसा अर्थ था? लोचन माने आंखें, सुरसना माने जबान, घ्राण माने नाग, लोचन सुरसना घ्राण और उर माने हृदय। इसमें उत्साह भर देते हैं। क्या मतलब? इतने बढ़िया है ये फल कि आंख देखती है तो आंख खुश हो जाती है, नाक को गंध आती है तो वो प्रफुल्लित हो जाती है, जब मुंह में पानी आने लगता है रसना समझे ना, और हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है, बढ़िया मजा आ गया। लोचन सुरसना ग्राण उरे उत्साह के करता रहे, ये करने वाले हैं इसकी। मुपे न उपमा जाए बरणी, इनकी उपमा मैं नहीं दे सकता कैसे हूं, ये अनुपम है, और दो ही है अनुपम, एक सिद्धगति अनुपम है कुंद कुंद के अनुसार, और इस पूजन के अनुसार एक फल अनुपम है। क्या आदर मंदित्व शब्द सिद्ध ध्रुव में चले मनुभव। तो मुझे ऐसा लगता था सचमुच, मैं उस वक्त सब अर्थ समझता था एक अच्छा कि फलों की स्थिति है कि भगवान की, छंद तो ऐसे होना चाहिए कि जिसमें भगवान की स्थिति हो, आप समझे ना। उपमा उपमा जाए बनी सकल गुण फल सार हैं, कि जो फलों में गुण होना चाहिए वे सारे गुण इन फलों में आ गए हैं। सुफल चढ़ावत अर्थ पूरन, ऐसे बढ़िया फल मैं चढ़ाता हूं और जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परम अमृत रस रचू, और फिर मेरे ग्रंथ पूरी पूजन पूजन रचू, और फिर जासों पूजो परम पद देव साध गुरु तीन। तो हमारे बहुत होशियार लोग हैं ना, हमारे गांव में भी उस वक्त कहते हैं जासों की जगह फलसों, फलसों पूजो। क्यों भैया उसमें जासों लिखा था, तुमने फलसों क्यों कर दिया? मैंने अच्छा ना फल्स की है ना, तो वे जनत राज नहीं जानते थे। अरे जासों का भी रहस्य है। क्या रहस्य है जासों का? ये रहस्य है कि जिनका मैंने ऊपर वर्णन किया है ऐसे फलों से, अब तुमने फलसों कह के वहां से काट दिया कनेक्शन, वो कनेक्शन चला आ रहा ना। जासों पूजों परम पद देव सास गुरु तीन, ये तो देव सास गुरु इतना नाम आ गया, और बाकी भगवान देव सास गुरु के बारे में एक अक्षर नहीं है पूरे छंद में है? तो कहते हैं ये फल पूजा है, ये फल पूजा है कि देव सास गुरु पूजा है? एक तो मेरे हमारे हृदय में ये विद्रोहित है। तो हमने अपने छंदों में एक कोशिश की कि भगवान के गुणों को गाएं या अपनी बात बताएं। जैसे वो पूजन है ना शिव मंदिर पूजन, उसमें आप देखोगे निर्मल जल सा भगवान का स्वरूप है, और जल के कितने कितने दोष हैं, तुम मल प्रहारी है, पानी से धो दो तो सब चीज गंदगी साफ हो जाती, तो हे भगवान तुम मल प्रहारी हो। संत पढ़ो, मुझे याद नहीं है, बोलो तो। ये तो अर्क का है, जल का बोलो ना।
Yeah.
इसमें 6 लाइनों में 4.5 लाइनें भगवान के गीत गाए हैं। और सुनो, और जल से कैसे कि जल में जो जो गुण हैं वे गुण भगवान पर घटित किए हैं। तुम प्रभुवर, तुम जल से शीतल हो, जल से अविकारी हो, विकार धोने वाले हो, और क्या है, तुम जलधर हो, अमृत बरसाने वाले मेघ हो, तुम जलधि हो। जितने जितने शब्द हैं वो सब जल से भी संबंधित हैं और वे सारे गुण भगवान पर। चंदन से चंद तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान की पूजा बने, यानी वैसे ही नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, कभी नया शौक है हमारी तरफ से एक ठोक दो ऐसा ही है ऐसा है। आप समझे ना, देखिए अभी और एक बात और कहकर समाप्त करता हूं इसको प्रकरण को। युगल जी साहब की पूजन चलती थी, बहुत ही बढ़िया थी, हम लोग करते थे रोजाना, बहुत आनंद आता था। लेकिन एक बात उसमें भी मुझे खटकती थी, क्या कि भाई देवसाज गुरु पूजन में, जयमाला में देवसाज गुरु की स्तुति होनी चाहिए और उनके स्वरूप को बताना चाहिए स्तुति में भी, अगले नाम नहीं, स्वरूप बताना चाहिए। तो इसकी जयमाला कैसी होनी चाहिए, अब उसमें 12 भावना का चिंतन है। अब 12 भावना एक अलग साहित्य है, अब तुमने 12 भावना में ले तो 12 छंद तो तुमने उसमें ले लिए, अब बचा कहां। अब एक दो पेज से ज्यादा की तो जयमाला होती नहीं है, तो भाई इतनी सी बात रहेगी, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, गुरु प्रणाम और शास्त्र प्रणाम, मस्ती सी बात रहेगी। कहने को कुछ बचा नहीं ना, जगह नहीं है, इतनी सकरी कुकरी जगह में अनावश्यक मेहमान को क्यों ले आए। तो मैंने उस वक्त ये देवसाज गुरु पूजन नहीं बनाई थी, उसकी जयमाला बनाई थी। पहले मैंने वो जयमाला लिखी और उसे देवसास गुरु स्तुति नाम से छपाई, अपने पाठ्यक्रम में भी है ना, और उसमें बराबर जितने छंद हैं वो देवसास गुरु के स्वरूप को बताने वाले हैं। सर्वज्ञता और वीतरागता, ये अरहंत के दो, अरहंत सिद्ध के दो मेन गुण हैं, है ना। तो शुरू हुई कि तुम वीतराग हो, लीन स्वयं में कभी ना मैंने यह जाना, है ना। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना, मेरा मतलब यह है उन गुणों की चर्चा की। और वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, और उनकी वाणी को जिनवाणी कहते हैं, तो जिनवाणी को परिभाषित किया, और उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक मुझे अब दिल झुकाना। एक बिल्कुल बाद में वो व्यवस्थित मैंने उसे की, साल दो साल चलती रही ऐसी, फिर बाद में मैंने आज आई 8 छंद बना के और वो देवसाज गुरु पूजन का रूप दे दिया। मेरे कहने का मतलब जो भी लिखा गया किया गया उसके पीछे एक बहुत व्यवस्थित चिंतन है, लेकिन वो हर जगह से नहीं बताया जा सकता, उसी को बताने लग जाए तो ऐसे लगते हैं दूसरे की आलोचना कर रहे, पुरानी पूजनों की आलोचना कर रहे, ये हटा रहे ये कर रहे, तो समझेगा जगत, जो अपने अपनी होगी बुद्धि तो समझेगा, नहीं समझेगी तो हम क्या करेंगे। तो ये देव यानी हमारे उसमें भी विवेक काम करना चाहिए कि कहां क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए। एक बार MGD स्कूल है यहां, महारानी गायत्री देवी कन्या विद्यालय है ना, अजमेरी गेट पे, तो उसमें राजाओं महाराजाओं की लड़कियां पढ़ती थी, और राजाओं महाराओं जैसे जो सेठ होते थे ना सब जी, वे लोग की लड़कियां पढ़ती थी। तो मुझे बुलाया वहां भाषण देने के लिए, उन लड़कियों में 10वीं 11वीं तक की लड़कियां थी। तो साहब आप पधारो, किस विषय पर बोलोगी। तो मैंने कहा विचारों की दरिद्रता, क्या सब्जेक्ट दिया मैंने, विचारों की दरिद्रता, ये सब्जेक्ट मैंने दिया हुआ। और फिर मैंने जाके वहां भाषण क्या दिया कि देखो दरिद्रता क्या चीज है, इसे आप लोगों ने कभी फीलिंग नहीं किया। महाराजाओं की लड़कियां हैं, बड़े बड़े सेठियों की लड़कियां हैं और दसवीं ग्यारहवीं क्लास तक की हैं, इसलिए वास्तविक दरिद्रता क्या होती है ये तो आज तक आपने देखा नहीं। आपकी हालत तो वैसी है कि जब महारानी इंग्लैंड में विक्टोरिया के सामने बहुत भीड़ आई और नारे लगा रही थी तो विक्टोरिया ने पूछा क्यों लोग चिल्ला रहे, तो उनने बताया कि बटर एंड ब्रेड, वहां बटर एंड ब्रेड इन्हें खाने के लिए रोटी दाल भी नहीं है, माने भूखे हैं, इनकी समस्या क्या है, बटर एंड ब्रेड ये बोलते हैं, वहां फ्रेज है। तो अच्छा, इन्हें बटर और ब्रेड नहीं मिलता इसलिए तो ये बिस्कुट क्यों नहीं खाते क्या जवाब दिया, ये बिस्कुट क्यों नहीं खाते, ये साहब बटर एंड ब्रेड मतलब सबसे सस्ती थी, वो भी नहीं मिलती, इन्हें बिस्कुट कहां से मिलेंगे। लेकिन वो महारानी ये सोच ही नहीं सकती थी, वो तो जब बचपन में कभी कभी घर में ब्रेड की व्यवस्था नहीं होती थी तो उसकी मम्मी समझाती थी बेटा बिस्कुट खा ले, तो समझ में आती है बटर एंड ब्रेड नहीं हो तो बिस्कुट खा ले मैं चाहिए। तुम्हारी ये हालत है और दरिद्रता तुम समझ भी नहीं सकती हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि विचारों की दरिद्रता, इसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने ये जो ड्रेस पहनी उसके पीछे कोई चिंतन है, कोई विचार है। उनने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व तो करता हूं जहां की बहु अधिकतम जनता जिसके पास पूरे कपड़े तन ढकने को कपड़े नहीं है, अधिकार है ऐसे कपड़े पहने। और उसका एक गांधी गीता पढ़ी आपने, संस्कृत में लिखी है गांधी गीता, उसमें लिखा है कि एक बार वे दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे तो एक बहन मैली साड़ी पहने थी, तो गांधी जी ने उससे कहा बहन तुम बदल बदल के साड़ियां नहीं पहन सकती तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको धो तो लिया कर, क्योंकि वे सफाई पे बहुत जोर देते थे। तो उसने कहा तुम्हें क्या पता, मेरे पास एक ही साड़ी है, कैसे धोऊं, मैं रोजाना मजदूरी करती हूं तब शाम को मेरा घर का चूल्हा जमता जलता है, जिस दिन मैं साड़ी को धोती हूं सात दिन में एक दिन, उस दिन मैं काम नहीं कर सकती तो उस दिन मुझे उपवास करना पड़ता है। धोती कैसे हूं, जंगल में जाती हूं जहां कोई आदमी ना हो, तो आधी साड़ी धोती हूं और आधी पहने रहती हूं, वो उसे सुखाती हूं फिर वो सूख जाती है तो उसे पहनती हूं, फिर आधी साड़ी धोती हूं फिर उसे सुखाती हूं, इसमें मेरा दिन निकल जाता है, उस दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है। ये घटना देखकर उनने नक्की किया कि मैं भी अब जब तक देश में ऐसी समृद्धि नहीं आ जाती मैं नहीं पीऊंगा। तो उनके उस देश में भी एक चिंतन था ना। उनने कहा कि मैंने गाय का दूध छोड़ दिया, क्यों, कि गो माता की हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, उन्हें काटा जाता है तो उनका दूध पीने का हमें क्या अधिकार है, फिर वो बहुत बीमार होंगे। बीमार हुए डॉक्टर ने कहा कि तुमको दूध तो लेना पड़ेगा नहीं तो नहीं चलेगा काम, तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं लूंगा, तो फिर किसी ने समझा समझू करके कहा बकरी का दूध ले लो, तो उन्होंने बकरी पाली बकरी का ले लिया। उसमें लिखा आत्मकथा में कि जिंदगी भर में पछताता रहा कि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी, कि कहां टूटी, गाय का दूध का त्याग किया, अरे बकरियां भी तो करती हैं, मैंने तो जिस उद्देश्य से छोड़ा था वो उद्देश्य तो यहां भी वही की वही बात है। तो उनके पहनने में ओढ़ने में खाने में पीने में कोई विचार था, लेकिन हमारे खाने में पीने में कार नहीं है, नकल ही नकल है। उस वक्त राजेश खन्ना कट वो कुर्ता चलता था, हम नेहरू कट जैकेट पहनेंगे, राजेश खन्ना कट कुर्ता पहनेंगे, टोपी लगाएं, सब नकल ही नकल करना हम जानते हैं। हम किसी ना, अरे कम से कम नेहरू गांधी की तो नकल करी, बड़े लोगों की तो नकल करो, नकल भी हम किन की, ये नाच ना गाने वालों की नकल करते हैं। ये सूट पैंट क्या है, ये सात समुंदर पार के ये जो बाबू लोग हैं उनकी देश है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम विचारों से दरिद्र हैं, ये मैंने एक घंटा तक उन्हें समझाया। मैं तो आपको पांच मिनट में बता उसका नमूना। अशोक जी, हमारे खाने में, उठने में, पीने में, बैठने में, पूजन करने में, हर चीज में हमारे जो विचार हैं वो झलकना चाहिए। हर काम हमारा विचार पूर्वक होना चाहिए। पूजन हमने की तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके बारे में अपना भाव अभिव्यक्त करना चाहिए। तुम तो पंडित हो, विद्वान हो, बन गए हो, पूजन बना सकते हो, क्या जरूरत है कि दूसरों से काम चलाओ। आदर्श प्रस्तुत करो, बढ़िया से बढ़िया चीज लाके प्रस्तुत करो। हर चीज में, अध्यात्म में, शास्त्र में, जो भी पढ़ते हो, हर चीज में हमारे विचार प्रतिबिंबित होना चाहिए। उसके पीछे कोई चिंतन होना चाहिए हमारे लाइफ में, और नहीं तो सारी दुनिया गतानुगत का मैं देख देख के दूसरे की नकल। आजकल क्या चल रहा है, कौन सी साड़ी चल रही है, फलानी चल रही है, सीफोन की चल रही है, कौन सा कलर चल रहा है, बस खत्म। जो चल रहा है तो ये तो चल रहे वाले हैं, जो बहते हुए बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं, बहुत लोग ऐसे ही रहेंगे। ये नहीं कहता हूं कि नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग वास्तव में अपने को मैं महानता का अनुभव करते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो उनकी हर चीज में विचार झलकना चाहिए, चिंतन पूर्वक होना चाहिए, तब वो ही वो बात सही है।